आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
आज तक रेडियो पर यह है दिन भर, हमारा डेली इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट और मैं हूं कुलदीप मिश्र। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वैक्सीन अगले हफ्ते तक रोल आउट हो सकती है। उम्मीदें हैं। भारत में दो वैक्सीन कंपनियां एक दूसरे पर कमेंट कर रही थीं, अच्छा नहीं लग रहा था, पर मामला अभी हल हो गया लगता है। उधर तीन दिनों की एक मीटिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चल रही है गुजरात में। नजरें हैं इस बात पर कि बंगाल इलेक्शन और किसानों के प्रोटेस्ट पर क्या बातें होती हैं, क्योंकि आरएसएस की मीटिंग में जो होता है हर बार नहीं पर कई बार वो बीजेपी की पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होता है। किसानों के प्रोटेस्ट का भी हाल लेंगे। ट्रैक्टर लेकर महिलाएं दिल्ली सीमा पर पहुंच रही हैं। 8 तारीख को सरकार से अगले दौर की बातचीत होनी है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत दिल्ली में संसद भवन और कुछ सरकारी इमारतें नए सिरे से बनाई जानी हैं, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो समझेंगे कि विवाद क्या था, क्यों कुछ लोगों ने इसके खिलाफ अर्जियां लगाई थीं, और आखिर में बात करेंगे एक और बीमारी की जो कई प्रदेशों में पक्षियों में तेजी से फैल रही है और इंसानों को बचाने के लिए केरल में पक्षियों को मारना पड़ रहा है, जान लेनी पड़ रही है उनकी। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से।
ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। वे इस साल 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 29 जनवरी से 15 फरवरी तक बजट सत्र की सिफारिश की है। आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा, जबकि इस बार दोनों सदनों की कार्यवाही 4-4 घंटे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को नियमों के हिसाब से सही माना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट किया जा सकता है। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची से मंगलुरु तक बनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये पाइपलाइन एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले से निकलेगी। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 58 पहुंच गया है। इन सभी लोगों को आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे। माना जा रहा है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला राजनीति से ही अलग होना चाहते हैं। असम सरकार ने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत स्कूल जाने वाली हर लड़की को क्लासेस में शामिल होने के लिए हर दिन 100 रुपये मिलेंगे। ब्रिटेन में लगातार 7वें दिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने करीब 1.5 महीने के लंबे लॉकडाउन का ऐलान किया है, ताकि कोरोना के नए स्ट्रेन को रोका जा सके। और दुनिया की टॉप टेक कंपनी में शुमार गूगल में कर्मचारियों ने एक यूनियन बना लिया है। ये यूनियन कर्मचारियों के बेहतर वेतन, नौकरी की सुविधाओं, बेहतर वर्क कल्चर के लिए काम करेगा।
आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर, जिसमें हम दिन भर की कुछ खबरों पर इस तरह बात करते हैं कि उनका एक मतलब समझा जा सके। वैक्सीन कब आएगी, इस पर आज धुंध के कुछ बादल छंट गए। भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि ड्राई रन से जो फीडबैक मिला उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन्स को 10 दिनों के अंदर रोल आउट किया जा सकता है, वो तैयार हैं इसके लिए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया है, आप जानते हैं, लेकिन जिन्हें दिया है, जिन दो कंपनियों को, वो आपस में ही लड़ बैठे और फिर बाद में उनके बीच सुलह आज कराई गई। मोटा पैसा इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिशन टफ है, तो कंपनियों में टकराव दिखने लगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसके CEO हैं अडार पूनावाला। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ही वैक्सीन हैं अभी तक जो कारगर साबित हुई हैं, जिनके सबूत मिले हैं कारगर होने के, एक फाइजर, एक मॉडर्ना और एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। इसके अलावा जो भी वैक्सीन हैं वो पानी जितनी ही सुरक्षित हैं। तो अडार पूनावाला ने किसी का नाम नहीं लिया, पर यह समझा गया कि उनका इशारा भारत की अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर था। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। यानी एक प्राइवेट प्लेयर ने गवर्नमेंट बैग्ड वैक्सीन को पानी बता दिया। भारत बायोटेक के सीईओ को बुरा लगना ही था सो लगा, तो उन्होंने कहा कि जैसा ट्रीटमेंट हमारे साथ हो रहा है वैसा हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हम 200% ऑनेस्ट ट्रायल करते हैं। DCGI का भी यही कहना है कि दोनों ही वैक्सीन्स पूरी तरह सेफ़ हैं, अगर थोड़ा भी सेफ्टी कंसर्न किसी एक के साथ भी होता तो हम अप्रूव नहीं करते। तो ये वैक्सीन्स 110% सेफ़ हैं, ऐसा भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है। थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं जैसे कि बुखार, दर्द या फिर एलर्जी, लेकिन भारत की इन दो वैक्सीन कंपनियों में ऐसी बयानबाजी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए हो सकता है कि बैक चैनल से उन्हें समझाया गया हो, और उसका असर ये हुआ कि आज शाम दोनों कंपनियों का एक साझा बयान आ गया, जॉइंट स्टेटमेंट आ गया, जिसमें कहा गया कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम एक हैं। ऐसा दिखाया गया कि मतभेद हल हो गए हैं, दोनों कंपनियों ने पूरे देश में सही तरीके से वैक्सीन पहुंचाने की कोशिशों की बात कही वगैरह वगैरह। पर इतना तो तय हो गया है कि आने वाले समय में भारत सरकार को कंपनियों के इस गलाकाट कंपटीशन को और उनकी बयानबाजियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ख़ासतौर से तब जब वैक्सीन को लेकर ऑलरेडी बहुत तरह की आशंकाएं और अफवाहें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज अहमदाबाद में एक बैठक शुरू हुई, समन्वय बैठक कहते हैं इसे, और ये 3 दिनों तक चलेगी। इसमें संघ के जितने संगठन हैं जिन्हें संघ आनुषांगिक संगठन कहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भारत विकास परिषद हो, या जो किसानों का संगठन है किसान संघ वो हो, ऐसे 2 दर्जन से भी ज़्यादा संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक में आते हैं और कई विषयों पर बात होती है। इस पर नज़रें इसलिए भी हैं क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब हैं और बीजेपी की जो मजबूती वहाँ इस बार दिख रही है उससे काफ़ी उथल पुथल का माहौल वहाँ की राजनीति में है। TMC के कई नेता छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं। दूसरा, इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है जो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुका है, एक चुनौती बन चुका है उसको ख़त्म करवा पाना। तो ऐसे माहौल में बीजेपी के मात्र संगठन RSS की मीटिंग हो रही है, वहाँ क्या डिस्कशन हो रहा है, हमारे रिपोर्टर गोपी घांगर अहमदाबाद में ही मौजूद हैं, इस खबर को फॉलो कर रही हैं, नज़र रख रही हैं। हमने उनसे बात की और पूछा कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या क्या है।
गुजरात के गांधीनगर में आज RSS की 3 दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण जो समन्वय बैठक है वो शुरू हुई, जिसमें संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत RSS की करीब 25 से ज़्यादा जो संगठन है वो सारे इस मीटिंग के अंदर जुटे। साथ ही ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मीटिंग में BJP अध्यक्ष JP नड्डा और जो संगठन महामंत्री है BL संतोष, उन्होंने भी हिस्सा लिया। और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो एजेंडा है एजेंडे में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि पिछले कई सालों से RSS जो है वो बंगाल के अंदर अपना काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे RSS का अपना एक पूरा नेटवर्क है। तो अब उस नेटवर्क को किस तरीके से बंगाल में लाया जाए ताकि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें उसका फ़ायदा मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए, इस मामले को लेकर भी वहाँ पे चर्चा हुई। तो वही अगर बात की जाए, यहाँ पे किसान संघ के लोग भी होंगे, तो किसान संघ जो बिल आया है, नया कृषि बिल आया है, उसको लेकर भी चर्चा कर सकता है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से जो किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, अभी भी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि बिल रद्द होना चाहिए, तो उसे लेकर भी किसान संघ के जो लोग हैं वो बातचीत कर सकते हैं और जो अलग अलग संगठन है RSS के वो सारे अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया जाए, उसके लिए जो फंड इकट्ठा करना है, जो लोगों के पास से चंदा लेना है वो किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, उसको लेकर भी सारी चर्चाएं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो एजेंडा था उसमें 3 महत्वपूर्ण बात है, 1 बंगाल चुनाव, 2 कृषि कानून और 3 राम मंदिर के लिए किस तरीके से चंदे को इकट्ठा किया जाए।
गोपी, ये बताइए कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, क्या इस पर कोई बात हुई, कुछ इस पर जानकारी मिल पाई?
बिल्कुल, देश में किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है। पिछले 30 दिनों से ज़्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे किसान संघ के भी नेता पहुँचे हुए हैं, जो किसान संघ के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पे मौजूद है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिल को लेकर पिछले दिनों राजनीति हुई है, साथ ही किसान जो है वो बिल को रद्द करने की मांग के साथ अपनी बात पे अड़े हुए हैं। सरकार के साथ दो बार उनकी बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी सफलता सरकार को नहीं मिल पाई है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी इस मीटिंग के दौरान। वहीं जो 26 से ज़्यादा अलग अलग संगठन आए हैं वो भी अपनी बात को लेकर आए हैं कि जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में क्या राय है, उसको लेकर भी ये बातचीत होगी। और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक किस तरीके से पहुँचाया जाए उसको लेकर भी ये सारी चर्चा होगी। लेकिन किसान बिल को लेकर बातचीत होना तय है, क्योंकि किसान संघ वहाँ पे पहुँचा हुआ है और माना जा रहा है कि किसान संघ जो किसानों की बात है वो सबके सामने रखेगा।
ये थी अहमदाबाद से आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर।
अगली खबर किसानों के प्रदर्शन पर। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को अब 1.5 महीना हो जाएगा 3-4 दिनों में। ठंड भी बढ़ी, इस बीच बारिश भी हुई, नया साल भी आ गया, पर किसान सीमाओं पर अपने अस्थाई टेंट्स में, ट्रकों में, ट्रॉलियों में प्रदर्शन पर बैठे रहे। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछली 2-3 बैठकों को डिसाइसिव भी कहा गया कि कुछ फैसला तो होकर के रहेगा, लेकिन अब तक जो मुख्य मुद्दा है उस पर कोई हल नहीं निकल पाया है। 2 मुद्दे मुख्य हैं, एक तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी किसान चाहते हैं, और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर लीगल गारंटी चाहते हैं, और किसान कानून वापसी से कम पर तैयार हैं नहीं, सरकार संशोधन से आगे बढ़ने को राजी नहीं है, तो गतिरोध फंसा हुआ है। एक बैठक में 2 मुद्दों पर बात बनी थी, एक पराली जलाने को डीक्रिमिनलाइज करने पर और बिजली बिल वाले मुद्दे पर, लेकिन बाद में आशंकाएं जताई गईं कि वो भी एक मौखिक भरोसा ही था सरकार का, लिखित में तो कुछ दिया नहीं गया। तो ऐसे में सरकार के रुख को देखते हुए किसानों ने प्रदर्शन को और तेज़ करने की बात कही है। 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है, और उससे ठीक एक दिन पहले 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। सुनिए स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव को।
7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, एक को चार तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साक्रस करके जगह है वहां, रिवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा।
आगे की रणनीति क्या होगी इसे लेकर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों में आज सिंगू बॉर्डर पर एक मीटिंग हुई। हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं कुमार कुणाल, वो वहीं मौजूद थे, हमने उनसे बात की।
देखिए, आज की बैठक के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली होने वाली थी KMP पर, उसको एक दिन के लिए मुलतवी किया गया है। अब 7 जनवरी को होगी ये ट्रैक्टर रैली, और ट्रैक्टर रैली जो है वो 2 हिस्सों में होगी। एक हिस्सा जो है वो सिंगू बॉर्डर यानी जो कुंडली है, कुंडली से लेकर के जो टिकरी बॉर्डर है वहां तक जाएगा। दूसरा जो है वो गाजीपुर से लेकर के, गाजीपुर चल से शुरू होगा और पलवल की तरफ जाएगा, और फिर पलवल से गाजीपुर तक पहुंचेगा। यानी जो ट्रैक्टर रैली कल होनी थी यानी 6 जनवरी को होनी थी, वो अब 7 जनवरी को होगी। और इसके आगे ये भी तय किया गया है कि जो आंदोलन है उसको और बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का मतलब यही है कि और ज्यादा लोगों को बुलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जिस तरीके से अभी किसान डटे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर पर, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, वहां पर लोगों की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़े। तो ये एक तरीके से जो सारे के सारे नेता हैं उनका ये मानना है कि सरकार मान नहीं रही है। 8 तारीख को भी बातचीत के लिए समय जरूर दिया गया है, लेकिन उससे बहुत कुछ समाधान निकलने की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए लगातार अब किसान यूनियनों का ये मत है कि हम सरकार पर दबाव की रणनीति हम भी बनाएं और कोशिश करें कि अपनी तादाद बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ जो आगे की रणनीति है उस पर भी अमल करना शुरू किया जाए, जो कि 26 जनवरी तक इन किसानों की रणनीति दिखाई पड़े।
जो कुणाल, प्रदर्शन को अब 1.5 महीने करीब होने वाले हैं, एक अरसा बीत गया है, किसान कैंप में अभी इस बीच क्या माहौल है, क्योंकि एक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है क्या सरकार के प्रति, क्या जो सरकार पर प्रेशर है उसे बनाए रखने के लिए या उसे बढ़ाने की कोशिशें हो रही है, अभी माहौल क्या है किसान कैंप?
देखिए, हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ा, एक तो बात थी कि दिल्ली में मौसम अभी बहुत अनुरूप नहीं है, कई जगहों पर बारिश हुई, उसके बाद ठंड भी काफी है, इसके बावजूद जो उत्साह है किसानों के कैंप में वो कहीं से भी कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। और यही किसान कह रहे हैं साफ तौर पर कि हमें अगर लंबा रुकना भी पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयारी हमने कर रखी है। बात यही है कि जो अंग्रेजी में एक कहावत है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन पहले पलक झपकाएगा, क्या सरकार झपकाएगी या फिर किसान झपकाएंगे, उसका इंतजार चल रहा है। लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत को लेकर के सरकार के पास कोई जो एक रास्ता होना चाहिए या एक एजेंडा होना चाहिए वो है ही नहीं। आज हमने राकेश टिकैत से भी बात की थी, उनका यही कहना है कि हमने 8 तारीख के लिए सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप बिल वापसी करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा तय करके आइए। और सरकार ने भी माना है कि किसान अब बिना बिल वापसी के जाएंगे नहीं, तो अगले बैठक में शायद सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आए जिसमें बिल वापसी को लेकर के कोई प्रस्ताव होगा। तो ये किसानों का मानना है। इस बीच में किसान डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है और जैसा 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी तो उम्मीद यही कि उससे भी उत्साह बढ़ेगा जरूर। तो ये अभी तक जो माहौल दिखाई पड़ता है खासतौर पर अलग अलग बॉर्डर रूम पर वो यही दिखाई पड़ रहा है।
ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
और अगली खबर यह है कि दिल्ली में नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके तहत संसद भवन समेत कई सरकारी बिल्डिंग्स को नए सिरे से बनाया जाना है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो कानूनी दिक्कतें थीं वो आज दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस था इस प्रोजेक्ट का उसे एक्सेप्ट कर लिया। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। तो इसमें जस्टिस AM खनविलकर थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी थे और जस्टिस संजीव खन्ना थे। सेंट्रल विस्टा क्या है? दिल्ली का जो राजपथ है उस पर जो 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है उसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा। तो सेंट्रल विस्टा में आसपास करीब 44 बिल्डिंग्स हैं, उसी में संसद भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक वगैरह है। तो इस पूरे जोन को रीप्लान किया जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसकी लागत है करीब 30,000 करोड़ रुपये। तो इसके तहत ये होगा कि जो पुराना गोल वाला संसद भवन है उसके सामने करीब 13 एकड़ ज़मीन पर एक नया तिकोना संसद भवन बनाया जाएगा। इस ज़मीन पर अभी पार्क है और कुछ अस्थायी निर्माण वगैरह है, ये सब हटाया जाएगा और नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक के समय इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या थी, पर सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हर साल 1,000 करोड़ रुपये बचेंगे, क्योंकि अभी कई मिनिस्ट्रीज़ के बिल्डिंग्स के किराए पर काफ़ी पैसा ऑलरेडी खर्च हो जाता है, क्योंकि कई मंत्रालयों के पास अपना भवन नहीं है तो वो किराए की बिल्डिंग्स में चल रही हैं। तो आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन विवाद क्यों था, ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों, आज तक रेडियो की रिपोर्टर अनिशा माथुर से हमने बात की।
देखिए, आपत्तियां काफी सारी उठाई गई थी। बेसिक इशू अगर मैं आपको बताऊं तो ये था कि जो लैंड यूज का चेंज है, जो मास्टर प्लान में जो पलटा गया है उसको गलत तरीके से पलटा गया है। ये पेटिशनर्स कह रहे थे कि आपने जो रेजिडेंशियल एरिया को इंस्टीट्यूशनल बना दिया, फॉरेस्ट एरिया को इंस्टीट्यूशनल बना दिया, जो पार्क एरिया था उसको भी चेंज कर दिया है, वो गलत किया है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग की जो जरूरत है लॉ के अंडर, DDA एक्ट के अंडर, वो आपने नहीं की। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। उसके बाद ये भी कहा गया था कि ये जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं बिना कंसल्टेशन के। आपने जो सेंट्रल विस्टा कमेटी बिठाई है उसने भी बहुत जल्दी जल्दी में काम किया है, उन्होंने ढंग से ध्यान से ये नहीं देखा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। और एक बड़ी बात ये पेटिशनर्स ने उठाई थी कि जो पार्लियामेंट की रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सरकारी बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उस एरिया में उनकी कंस्ट्रक्शन की जो बात हो रही है, उस सारे प्रोजेक्ट को आपने एक प्रोजेक्ट की तरह पास करवाया लेकिन क्लियरेंसेज आपने कुछ सबकी नहीं ली। तो इन सब इश्यूज को लेकर अब ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो सरकार ने जिस तरह से परमिशंस ली हैं और जिस तरह से जो कमिटियों से सारा प्रपोजल पास करवाए हैं वो बिल्कुल ठीक करवाए हैं, सारा काम कानून के हिसाब से हुआ है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है।
अनिशा, सरकार ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी थी, मतलब सरकारी दलील क्या थी जिसे कोर्ट ने आज अपने फैसले में एक्सेप्ट किया है?
देखिए, सरकार ने जो दलील दी वो ये थी, वो भी दो तीन इश्यूज मुद्दों पर थी। सबसे पहले तो ये कि जो हमने मास्टर प्लान चेंज किया है वो बिल्कुल माइनर मॉडिफिकेशन है। सरकार के हिसाब से उन्होंने मास्टर प्लान में कोई बड़ा चेंज नहीं किया, इसलिए कोई बहुत लंबी चौड़ी पब्लिक कंसल्टेशन की उनके हिसाब से जरूरत नहीं थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने कंसल्टेशन की थी, हमने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 30 दिन के अंदर जिसको भी अपना कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, जिसको भी जो कहना है लिखित में दे दे। उसके बाद हमने 3 दिन पहले SMS और ईमेल भेज के लोगों को बताया कि इस दिन हम पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए हैं, कुछ 1200-1300 लोगों से ऑब्जेक्शन जो आए उनको सुनने के लिए एक तारीख दी गई, लेकिन कुछ 40 के आसपास ही लोग आ पाए उस दिन। दूसरी चीज सरकार ने कहा है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये अलग अलग, पार्लियामेंट का प्लान अलग है, सेक्रेटेरिएट का प्लान अलग है, तो इसलिए इसको साथ में क्लियरेंसेस लेने की उनको जरूरत नहीं थी। एक बात सरकार ने जो लगातार ये पॉलिटिकली भी कही है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, हेरिटेज बिल्डिंग के नाम पर जो ऑब्जेक्शन रेज किए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये बिल्डिंग्स काफी पुरानी हो चुकी हैं, खासतौर से पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है और कुछ सरकारी ऑफिसेज जो है जैसे कि कृषि भवन, शास्त्री भवन वगैरह है, जो पुराने हो चुके हैं, बिल्डिंग जो है वो लोगों का भार नहीं झेल सकती, बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह है उनको फॉलो नहीं करते, एसी और बिजली के जो तार वगैरह हैं वो भी पुराने हो गए हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट में और डिलिमिटेशन की बात हो रही है कि डिलिमिटेशन दोबारा से करके पार्लियामेंट में एमपी की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बात सरकार कर रही है, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग को बड़ा करना जरूरी है ताकि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह हो सके, बैठने की जगह हो सके, ऑफिसों की जगह हो सके, जो कि अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी दलीलें सरकार ने दी थी और इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और कोर्ट ने खास तौर से यह भी कहा है कि जब पॉलिसी डिसीजन है इस तरह का तो इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते।
अच्छा अनिशा, ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, मतलब जजेस के बीच मतभेद थे और 2-1 के बहुमत से ये फैसला हुआ है, लेकिन जिनका फैसला अलग था बाकी दोनों जस्टिस, जस्टिस संजीव खन्ना, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे?
देखिए, संजीव खन्ना जी ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रेज किए रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी डॉक्यूमेंट ये दिखाने के लिए नहीं दिया है हमें कि जो ऑब्जेक्शंस और सजेशंस वगैरह जो लोगों ने उठाए थे, आपत्तियां उठाई थी, उनको सुना गया था या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्सनल हियरिंग जैसे बहुत जरूरी चीज है जो लॉ में मैंडेटरी थी। और संजीव खन्ना ने कहा है कि जो 2 दिन का आपने वक्त दिया था कि हम इस दिन सुनवाई करेंगे, वो रीजनेबल नहीं था, वो रीजनेबल टाइम नहीं था, वो लोगों जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया भी था उनके पास समय नहीं दिया गया आके बात करने का। दूसरी चीज जस्टिस खन्ना ने ये कही है कि जो हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी है, जो खासतौर से कमिटी बिठाई गई है ये इस तरह की धरोहरों की रक्षा करने के लिए, उससे आपने बात नहीं की, उसकी क्लियरेंस आपने अभी तक नहीं ली है। ये उनकी ओपिनियन है, ये जजमेंट में लेकिन ये कह दिया गया है कि जिस तरह से सरकार ने किया क्योंकि वो उनकी जरूरत के हिसाब से किया, वो सही किया।
ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर। एक तरफ कोरोना वैक्सीन से जुड़ी राहत भरी खबरें हैं और दूसरी तरफ एक नया संकट। बीमारी पुरानी है लेकिन उसका आउटब्रेक नया है, बर्ड फ्लू, जो पक्षियों में होती है और उनसे इंसानों में फैल सकती है। उसका कई राज्यों में आउटब्रेक हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू फैल रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकारें अब हरकत में आ गई हैं। केरल ने इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है और वहां अब बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड 50,000 पक्षियों को मारने की, उनकी जान लेने की तैयारी है, क्योंकि सरकार को लगता है कि यही बेहतर है, वरना ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। और ऐसे समय में जब ऑलरेडी एक हेल्थ क्राइसिस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, एक और बीमारी को किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए झेलना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इंसानों को इस बीमारी से, बर्ड फ्लू से किस तरह का ख़तरा हो सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की CHL हॉस्पिटल इंदौर के डायरेक्टर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज के ऑपरेशनल हेड डॉक्टर निखिलेश जैन से।
देखिए, बर्ड फ्लू जो है आमतौर पर जब हम बोलते हैं तो उससे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है इंसानों में, और जब हम बात करते हैं कि बर्ड फ्लू से इंसानों को खतरा हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि क्या ये इंसानों को फैल सकता है इन पक्षियों से या इन चिड़ियों से। फैल तो सकता है, थियोरेटिकली इस तरह से फैल सकता है कि उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो उनकी डीट है उनके कॉन्टैक्ट में आने से, या इनके सिक्रीशंस रहते हैं इन पक्षियों के, उनके सिक्रीशंस यानी जैसे उनके टीयर्स यानी आंसू या किसी और प्रकार का सिक्रीशन उसके कॉन्टैक्ट में आने से इन्फ्लुएंजा किसी भी इंसान को हो सकता है। हालांकि लास्ट बर्ड टू ह्यूमन स्प्रेड जो माना जाता है वो 2017 में डॉक्यूमेंट किया गया था, उसके बाद से ऐसे केस नहीं आए हैं। बर्ड फ्लू हम आमतौर पर बोलते हैं ये ऐसा स्ट्रेन है जिसको H5N1 बोला जाता है, और अभी लंबे समय से यानी 2017 के बाद से बर्ड ह्यूमन यानी इन पक्षियों से ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं मिला है। 2017 में लास्ट ह्यूमन ट्रांसमिशन मिला था।
अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी बर्ड फ्लू तो आउटब्रेक आते रहे हैं पहले भी, तो इसके इलाज को लेकर के भी क्या कुछ जानकारी है कि हम जानते हैं कि जब बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड आदमी हो तो उसको इस तरीके से, इस प्रोटोकॉल से ट्रीट किया जाता है?
यदि इंसानों में बीमारी फैलती है तो उसका इलाज एक सामान्य इन्फ्लुएंजा निमोनिया के तौर पर ही होता है, इसके लिए अलग से कोई एडिशनल दवाई नहीं आती है। और जहां तक है उसकी सीवियरिटी भी जो है सब में इतनी तेज नहीं रहती, और केवल वो व्यक्ति जिनको उससे कारणों से खतरा हो, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं या फिर जिनको शुगर है या जिनको जो कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो स्टेरॉइड्स पे हो, जो ऐसी बीमारी चल रही है जिसके चलते वो स्टेरॉइड्स पे हैं, उनको सामान्य से अधिक खतरा रहता है। लेकिन ये अभी कहना बेमानी होगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 के बाद से ह्यूमन ट्रांसमिशन डिस्क्राइब नहीं है। ये जब जितनी चीजें हैं ये पहले के परिप्रेक्ष्य में सही थी, लेकिन अभी 2017 के बाद से कोई ऐसा केस आया नहीं है जिसमें बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, मतलब जो हमारे हाथ में?
सावधानी तो शायद यही है कि इस समय पर नॉनवेज खाना, खासतौर पे बर्ड बीट है, उससे संबंधित जो भी चीजें अपन हैंडल करते हैं उनको हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बर्ड फ्लू डॉक्यूमेंट हुआ है, यानी देखा गया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में और केरला में, वहां पे उन्होंने पहले ही इन सब पक्षियों को कल करना यानी मारने के आदेश दिए हैं, मेरे को जितना पता है सरकारी तौर पर दिए गए हैं, और इस स्थिति की अभी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ये आगे कितना फैलेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी की स्थिति में इन चार प्रदेशों में फैल चुका है।
ये थे डॉक्टर निखिलेश जैन। आज तक रेडियो पर दिनभर में आज इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया था प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। और आपके ईमेल्स हमें मिलते रहते हैं हमारे तमाम शोज पर। आज जिनका ईमेल पढ़ रहा हूँ वो हैं शील पटेल मेहसाना गुजरात से। इन्होंने बीते वीकेंड पर ये चिट्ठी हमें लिखी थी और ये लिखा इन्होंने कि दो दिन से आज का दिन और दिन भर नहीं आ रहा है, कृपया चालू करें, मैं आदी हो गया हूँ। सुबह काम करते वक्त आज का दिन और रात को सोने की तैयारी करते वक्त दिन भर सुनने की लत लग गई है। शील पटेल जी, पहले तो थैंक यू कि आपने ईमेल करने का वक्त निकाला। और शील, शायद आप नए लिसनर हैं, आपको बता दें कि हम आज का दिन और दिन भर जो हमारे न्यूज़ एनालिसिस के शो हैं उन्हें अभी हम सिर्फ सोमवार से शुक्रवार लेकर के आते हैं, और बाकी जो शनिवार और रविवार का दिन है उस दिन हमारे दूसरे शोज़ होते हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। शनिवार को मनी मैनेजर और कोरोना कवरेज होता है और रविवार को म्यूज़िक पर शोज़ हैं, पॉडकास्ट है और ज्ञान ध्यान है। पर आपकी ये बात को हम समझते हैं कि हफ्ते में दो दिन आप हमारे शोज़ मिस करते हैं क्योंकि आपको आदत हो गई है, और यकीन मानिए ये सुनकर के जितनी खुशी हमें हुई और हमारी टीम को हुई होगी, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं बहुत मेहनत से दिन भर और आज का दिन के लिए हमारी टीम काम करती है, इस बात का पूरा सम्मान हम करते हैं, अपना एक्नॉलेजमेंट जताते हैं कि आपको हमारे शोज़ अच्छे लग रहे हैं, और ये भी कि बहुत जल्द हम कुछ नए शोज़ भी लेकर के आएंगे, उन्हें भी आप सुनिए। न्यूज़ के अलावा भी जो हमारे शोज़ हैं हर सोमवार को एक लंबा शो आता है बातचीत का, तीन ताल उसका नाम है, वो खोज कर सुनिए, पुराने एपिसोड ही सुन करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, उसमें आपको मज़ा आएगा। और ऐसे ही हमें फीडबैक आप लिखते रहिए, आपकी चिट्ठियाँ हमारा संबल हैं, उन्हीं से हम ये तय करते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। बाकी डेटा तो आता ही है, ये समझ में आता है कि कौन सा शो सुना जा रहा है कौन सा नहीं, लेकिन चिट्ठियों से जो इमोशंस हमें मिलते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो शील पटेल जी बहुत थैंक यू, और आप भी अगर शील पटेल जी की तरह हमारे शोज़ पर कोई फीडबैक देना चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। मेरा नाम कुलदीप मिश्र है, कल फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।